نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة بقرة آية نمبر 231 سے لے کر 234 تک. ابھی تک جو کچھ بھی طلاق کے موضوع پہ ہم نے بات کہی اور سنی میں اس کا چند جملوں میں سوال جواب کی صورت میں خلاصہ آپ کے ساتھ رکھتی ہوں کیونکہ آج اب مزید باتیں اسی موضوع پہ ہوں گی. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم پچھلی تقریباً دو کلاسز سے نکاح اور طلاق کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موضوع پہ سب سے پہلے ہمیں جو نصیحت کی تھی وہ کیا کی تھی کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کریں ایمان والے اور اس کا اپوزٹ بھی, کیونکہ نکاح جو ہے ایک دل کا تعلق بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے میں شوہر اور بیوی سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں ہے. آپ مانیں نہ مانیں دنیا میں سب سے بڑی دوستی شوہر اور بیوی کی ہے, قربت شوہر اور بیوی کی ہے. ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا, اس سے خوش ہونا, اس سے ناراض ہونا, یہ شوہر کے ساتھ ہے. گویا کہ وہاں سے ہم نے دیکھا تھا کہ لائک مائنڈڈ ہوں ہر لحاظ سے کف ہوگا تو بعد میں طلاق کی کیفیات کم ہوں گی. انسانی معاملات میں بدترین چیز طلاق ہے. کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ ایک رشتہ انسان کو دیا گیا کہ اپنی مرضی سے باندھو, اسی میں انسان ناکام ہے. اگر ہمیں کہا جاتا اپنے ماں باپ بھی چوز کرو, بھائی بہن بھی چوز کرو, تو میرا خیال ہے کسی وقت ماں باپ کو طلاقیں ہو رہی ہوتی, کبھی بھائی کو طلاق دے دیتا انسان, کبھی بہن کو. نہیں, ہم میں سے کوئی بھی چوائس نہیں رکھتا کسی کو بھی چوز کرنے کی. ایون ماموں, پھپھی, خالہ, چچا, ہم میں سے کسی نے کوئی ایسا رشتہ نہ چوز کیا نہ ہے. صرف دنیا کا واحد رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ. اب وہ رشتہ نہیں بنا یا سب کچھ سوچ کے بھی کیا گا تو پھر بھی نہیں بنا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس رشتے کو توڑنے کا خوبصورت طریقہ دکھا دیا جس میں ہم نے دیکھا کہ طلاق مرتان, طلاق دو بار ہے. کیسے, سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیا طلاق مرتان سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ طلاق جس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق ہے وہ دو بار ہے, تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق ختم. ایسی طلاق کو رجعی طلاق کہتے ہیں. پھر اگر تھوڑا سا اور وقت گزر جائے بیچ میں سے تو بائن بن جاتی ہے, عدت گزر جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ پھر نکاح دوسرا کرنا پڑتا ہے. اور طلاق بتا, یہ وہ طلاق ہے جس میں تینوں طلاقوں کا حق انسان اختیار کر لیتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا حق محدود کیوں کیا ہے, وائی لمیٹائز دیٹ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ظلم سے بچانے کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے عورتوں کے اوپر ان گنت طلاقیں بڑھتی تھی اور ساری ساری زندگی عورتیں عدت میں گزار دیتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا کہ رکھو تو اچھے طریقے سے رکھو, چھوڑو تو اچھے طریقے سے رکھو. اگلا سوال, طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو یہاں جن باتیں جو بہت ہی ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ پڑھ لی ہیں, پہلی بات ہے کہ طلاق کا مسنون طریقہ طہر کی حالت میں عورت کو ایک بار طلاق بولی جائے, اس سے پہلے پورا اچھی طرح سوچ سمجھ لیا کہ یہ رکھنا ہے رشتہ, نہیں رکھنا, نہیں رہ سکتا. پوری کوشش کے بعد جب لگا کہ نہیں ہو سکتا تو پھر عورت کو طہر کی حالت میں بغیر کسی تعلق قائم کیے ایک بار طلاق دے دی جائے گی. پھر پورا مہینہ خاموش رہا جائے گا. بہترین بات یہ کہ 3 مہینے خاموش رہا جائے, اسی گھر میں عورت رہے, مرد بھی رہے گا. اور ایسی طلاق کی صورت میں جب ایک عورت 3 ماہ گزرنے کے بعد اس مرد کے نکاح سے نکلے گی تو یہ احسن طلاق ہے. اس کو عربی زبان میں طلاق حسنہ بھی کہتے ہیں. آج کی ہماری ایک آیت جو اسی آیت سے شروع ہوگی اسی قسم سے, اور یہی طریقہ تھا. عرب لوگوں کو یہ بات بالکل کلیئر سمجھ آ گئی تھی کہ طلاق 1 ٹائم پروسیس ہے. یہاں میں وہی جملہ جو پچھلے سبق میں بھی بولا تھا آج پھر بول دیتی ہوں کہ طلاق کے ساتھ جو ہمارے کانسیپٹ میں ہے کہ طلاق پوری نہیں ہوتی جب تک 3 دفعہ نہ بول دی جائے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. 3 حق ہیں, 3 چوائسز ہیں. دیکھیے آپ کو ٹرائی دی جاتی ہے, ٹرائی 1, ٹرائی 2, ٹرائی 3. کسی کا کام پہلی ٹرائی میں ہو جاتا ہے تو بیوقوفی تو ہے نا کہ وہ دوبارہ بھی اسی کام کو کرے. تو پہلی دفعہ ایک بار کہنے سے, ایک سائیکل پورا ہونے سے طلاق ہو جائے گی. طلاق حسنہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں عدت گزرنے کے بعد ساری چوائسز پھر موجود ہیں. وہی شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اس عورت سے اگر عورت چاہے. مرد کی چوائس بھی آ گئی, وہ کرنا چاہتا ہے. عورت کی بھی مرضی شامل ہو گئی, کرے تو کہہ دے یس, نہیں کہے تو نہیں کہے. और तीसरी बात है कि औरत कहीं और निकाह, उसको इससे अच्छा शौहर मिलता है उधर निकाह कर ले, मर्द अब किसी और जगह कर ले। यानी इसमें सारी चारों ऑप्शंस मौजूद हैं। पहली सूरत में क्या थी कि सिर्फ मर्द के पास इख्तियार था, औरत के पास नहीं था। और अगला सवाल ये कि अगर कोई पीरियड्स में या ऐसे तोहर में जिसके बीच में सोहबत की हो तो तलाक दे दे, तो क्या तलाक हो जाएगी? हो जाती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के बेटे इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हो किसी बात पे गुस्से में अपनी बीवी को तलाक बोलते हैं। हजरत उमर फारूक ने पूछा कि क्या तूने उसको तोहर की हालत में तलाक दी? कहा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला आया कि भाई अल्लाह के नबी इसने ये किया, तो आपने कहा कि उसे बोलो इससे रजू करे, यानी अपनी तलाक वापस ले, फिर दोबारा अगर देनी होगी तो फिर तहारत में या ऐसी कैफियत में दे जो अल्लाह का तरीका है बताने का। तो पता क्या चला कि ये चीज दुरुस्त है। फिर दूसरी चीज इसमें हमने भी देखी, तलाक व मर्रतान है। तलाक का तान या मर्रतान में क्या फर्क था? यहां दो बार तलाक कहकर बता दिए गए कि तलाक का प्रोसेस दो डिफरेंट टाइम में दोहराया जा सकता है जिसके बाद इज्जत होगी। अगर तलाक का तान कह दिया जाता दो तलाके टू डाइवोर्सेस, तो इसका मतलब ये था कि एक ही नशिस्त में दो हो गई। ये बात हम पीछे देख चुके हैं। फिर इसके बाद अगली चीज क्या है कि क्या तलाक हराम है? हराम नहीं है। अच्छा, ये जो रिवायत बहुत पेश की जाती है ना कि अब गज़ुल अहलाल इला अल्लाह इज़्ज़ व जल्ला तला, ये रिवायत भी सनद के अतबार से कमज़ोर है, तो बहरहाल अच्छी तो नहीं है। फिर रोक लो अच्छी तरह से या छोड़ दो अच्छी तरह से, दोनों को हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। फिर इसके बाद आप देखिए कि खुला क्या होता है। दूसरी चीज़ हम देख चुके हैं, खुला क्या है कि जब नापसंदीदगी औरत की तरफ से हो, अब वो तलाक दे नहीं सकती लेकिन मांग सकती है, और मर्द ना दे तो खरीद सकती है। ये जुमला लिख ले, खुला क्या है कि औरत तलाक दे नहीं सकती, मांग सकती है, और मांगने पे अगर शोहर ना दे तो खरीद लेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे खरीदेगी? औरत अपना हक महर छोड़ दे, मर्द को कहती है मैं लालच देती हूँ, या उसको कहती मैं ठीक है मुझे पता है तुमने आगे शादी करनी है तो मैं तुम्हें हक महर छोड़ देती हूँ। मर्द कहता है ओके, कहता है नहीं छोड़ता, फिर भी नहीं देता। फिर कहती है अच्छा फलां चीज भी ले लो, फलां तोहफा ले लो, अपनी तरफ से दे दो, जिस जगह पे फैसला हो। लेकिन अच्छे मर्द जो है वो हक महर से ज्यादा चीज वापस नहीं लेते। अगला सवाल क्या है कि खुला के जरिए औरत जब तलाक लेती है तो क्या उसमें मर्द को रजू का हक होता है? बिल्कुल नहीं होता। देखिए ये तो औरत के साथ ज्यादती है, बेचारी ने पहले चीजें दीन ली, भावताव किए, मर्द ले के बाद में रजू कर ले, तो मर्द के पास खुला के बाद रजू का हक नहीं होता। खुला की इद्दत कितनी है? एक महीना। तलाक की इद्दत कितनी है? तीन क्रू से हैज तक या पाकी से पाकी तक, और या फिर बच्चा पेट में है तो वजह हमल तक। यहां तक हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद जब औरत और मर्द अलग हो जाते हैं तो उनको एक दूसरे को अच्छा बुरा कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए, दोनों सूरतों में यह है। फिर अगला सवाल एक आपसे लोग पूछ सकते हैं, या आपको खुद भी बताना चाहिए, औरत तलाक मांगे और मर्द ना दे तो क्या करे? फिर वो खुला लेगी अदालत से। इसको कहते हैं तलाक बजरिया या खुला बजरिया फसख। और अगर शौहर बीवी के कहने पे तलाक दे दे फिर वो आम तलाक बन जाती है, तो फिर वो अच्छी बात है, मर्द को देनी चाहिए जब औरत मांगे। जिस तरह एक मर्द तलाक दे सकता है तो औरत मांगे तो उसको भी देनी चाहिए। ये अलग बात है कि उस कमी बेशी को दूर करे, उससे काउंसलिंग करे, अच्छा बेगम अब ऐसे नहीं करूंगा, जो आपको नहीं पसंद वो मैं नहीं करूंगा, दिस एंड दैट। बहरहाल ये सब कुछ करके ये जो बात थी कि तिल का हुदूद उल्ला, ये बहुत अहम बात है। आप देखिए कि इस्लाम के दीन सिखाने का तरीका बहुत फर्क है लॉ पढ़ने से। अगर आप में से किसी ने लॉ पढ़ा है, कितने खुश्क मजमून होते हैं, ये सब्जी, ये दफा, ये फला, ये ऑर्डिनेंस, ये उधर ढूंढो, बहुत बोरिंग लगता है। इस्लाम जहां भी हदूद या अहकाम पढ़ाता है, यहां जैसे अभी देख रहे हैं इसी तरह सूरह मायदा, सबसे ज्यादा तकवा, एहसान, एक दूसरे पे फजल करना। इस्लाम की खूबसूरती ही यह है कि सिर्फ अकल को नहीं टच करता, दिलों को भी पकड़ता है, यानी कायल ही नहीं करता, माइल भी करता है। हम मुसलमानों को इस किताब को पढ़ने के दौरान ये जरूर समझना चाहिए कि दावा करते वक्त हमारा भी यही अंदाज होना चाहिए। बात सब हम हर वक्त कायल कायल करो, डू दिस, मैंने कह दिया, मैंने कहा, बस करो, गुना होगा, हराम होगा, नमाज छोड़ी, काफर हो जाओगे, ये होगा, ये आप कायल कर रहे हैं। जरा सी प्यार वाली बात तो करें कि देखो अल्लाह का हक है, देखो थैंक यू सबको कहते हो, अल्लाह को भी बोलो, ये मायल करने का अंदाज है। तो दावा का तरीका हमें इन आयात से मिल जाता है। बहरहाल अब ये सब कुछ हो गया, सब मामलात हो गए, अल्लाह सुबहाना तला ने कह दिया जो अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते वो जालिम है। और जुल्म क्या होता है कि इंसान अपनी हद से आगे निकल जाए। हक तल्फी को जुल्म कहते हैं। अल्लाह के साथ जुल्म करेगा तो शिर्क कर रहा है और दूसरों के साथ दूसरे का। फिर आगे हमने ये भी चीज देख ली थी कि जब शौहर बीवी दोबारा आपस में मिलना चाहते हैं तो ये जिसको हमारे हलस हलाला, इस पे थोड़ी सी बात करूंगी, ये लफ्ज ही ऐसा अजीब लगता है कि बात ही नहीं करने को दिल चाहता। आप देखिए कि हमारे कल्चर में लफ्ज हलाला बहुत ही मारूफ है, हलाला करना, हलाला कराने वाले, हलाला। मुझे एक स्पीकर है, बहुत ओपन बात करते हैं, मैं दिल आजारी का डर ना तो मैं सुनाऊँ आपको उनकी बातें, मिला तो मैं सुना ही दूं बेहतर है। जितनी कड़वी बातें उन्होंने और जो फैक्ट्स उन्होंने बताए हलाला करने के बारे में, कि आज मुसलमानों में एक पूरा मजहबी तबका मशहूर हो चुका है, ये हलाला करवाने वाले मौलवी हैं। पैसों से हलाला, वीकेंड हलाला, वीकडेज हलाला, ओवरनाइट हलाला, 3 डेज हलाला, और उस पर पैसे लेते हैं। वो बहुत अच्छे आलिम है, यानी अकीदे वाइज मुझे पता है, बुरी नहीं बात। उन्होंने रेफरेंस भी बताए, अखबारों की कटिंग्स थी, फला अदाकारा उसके दूसरे अदाकार से शादी थी, फिर झगड़ा हो गया, फिर उसके बाद तलाक हो गई, तो तलाक के बाद एहसास हुआ कि नहीं गलत हो गया ये, वो अब क्या है, हलाला करवाने के लिए उन्होंने शादी ढूंढनी है। और वो जो पढ़ पढ़ के सुना रहे थे कि वो फिल्म एक्ट्रेस है, वो कहती है कि जो जो मुझे भी आगे से लोगों के रिस्पॉन्सेज आए कि मैं ज्यादा हक रखता हूँ आपका हलाला करा दूँ, आई एम योर फैन, मुझे ये मौका दीजिए, मुझे ये इज्जत बख्शिए, क्या ये जिना नहीं है, ये बेहयाई। एक जुमला मैंने उस दिन नहीं बोला था, आज लिखिए, हलाला किया नहीं जाता, ये अल्लाह की तरफ से अगर हो जाए तो हो जाता है। यानी हलाला की टर्म को समझिए कि हलाला बाजाबता प्लान इरादे के साथ नहीं किया जाता, अल्लाह की तरफ से हो जाता है। आप कहेंगे आप ये भी थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये कैसे होता है, वही जो बात पीछे सुन चुके आप, अल्हम्दुलिल्लाह औरत एक जगह से फारिग हो गई, फिर दूसरी जगह शादी हुई, कुछ दिन निभी, अच्छी रही, अल्लाह के हुक्म से वहां ना निभी, एक सूरत। दूसरी बात है, वो दूसरे शौहर का इंतकाल हो गया, औरत उसकी इद्दत से फारिग हो गई। अब अगर पहले शौहर के साथ निकाह करना चाहें तो दोबारा सारी वही टर्म्स जो पहली दफा होती है उसके ऊपर, वो सब कुछ वली की बात, नया हक महर, औरत का इजाब व कबूल, मर्जी, इसके बाद होगा। तो ये तो किया अल्लाह ने अपनी मर्जी से, ठीक है, ये तो ठीक है। और दूसरी दफा पहली जगह शादी होने के लिए लाजमी है कि दूसरे शौहर के साथ भी इस दवाजी ताल्लुक कायम हो। खैर, अब इसमें क्या है, आप इरादतन ये करें कि चलें जी अब हमें इसको पहली जगह के लिए हलाल करना है तो किसी जगह इसके साथ बात कर लें, वो कर लें, तो इस पे तो अब चंद हदीसें सुन लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाला करना और कराना हराम है, और हलाला करने और करवाने वाले पर लानत है, ये इब्ने माजा की रिवायत है। आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कराए का बकरा ना दिखाऊं, सांड के लफ्ज भी आते हैं ऐसे, यानी बुरे लफ्जों में। साहबा ने कहा, बताया कि जरूर बताइए, तो फरमाया हलाला करने वाला, आपने हलाला करने और करवाने वाले पर लानत फरमाई, ये इब्ने माजा की रिवायत है। यानी कराए का ना ये तो कि जिना की बदतरीन किस्म नहीं है, नेकी के नाम पर जिना, बनी इसराइल को हम ऐसे ही कहते हैं, मछलियां पकड़ लेते थे हफ्ते वाले दिन, ये भी कोसी किस्म की कैफियत होती है। फिर इसी तरह से हसन बसरी के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरी कौम में से एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी, इस पर वो दोनों नादिम हुए, मेरा इरादा है कि इस औरत से निकाह कर लूं, इसका मेहर दूं, फिर जिस तरह शौहर अपनी बीवी के पास जाता है जाऊं, फिर इसके बाद इसको तलाक दे दूं। तो हसन बसरी ने जवाब दिया, ए नौजवान, अल्लाह से डरो और इसकी हदूद के लिए आग की खोंटी ना बनो। तो ऐसी कोई चीज इरादे से नहीं हो सकती। आप पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह सूरत निसा में कि निकाह की शर्तों में एक शर्त है, घर बसाना। टाइम मैरिज नहीं है, निकाह मुता इस्लाम में नहीं है कि ये मैं चूंकि अमेरिका जा रहा हूं, 3 माह का वीजा है तो वहां मुझे भी शादी की तो जरूरत होगी, तो मैं एक औरत से शादी कर लेता हूं और साथ ही कह दूं कि जिस दिन मैं अमेरिका से बाहर आऊंगा तुम्हारी मेरी तलाक होगी। इसको टाइम मैरिज या निकाह मुता कहते हैं, ये हराम है, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। तो आज के दौर में जिस निकाह के पेपर पे ये लिखा जाएगा ना, ये शादी साल रहेगी, 2 रहेगी, वीजा इधर लगेगा, फिर उधर लगेगा, फिर खत्म हो जाएगी, ये सब हराम है। निकाह का मकसद घर बसाना है और हलाला का मकसद घर उजाड़ना है। फिर आप देखिए कि निकाह में क्या कुछ होता है, आप इमेजिन करें, इसको एक औरत होने के नाते सोचें, अल्लाह ताला किसी को भी आजमाइशों में ना डाले। शादी से पहले क्या कुछ होता है, एक औरत के जज्बात होते हैं, मर्द के भी होते हैं, नई नई शादी होनी है, फिर उसके लिए तैयारियां होती हैं, शादी का हॉल ढूंढा जाता है, जो कुछ भी हमारे यहाँ चलता है। फिर शादी होती है, नई शादी का जोड़ा बनता है, फिर वलीमा होता है, वलीमे के बाद दुल्हन नए घर जाती है, कितने लाड जाओ। क्या हलाले में वलीमा होता है? क्या हलाले में वो इजाबो कबूल होता है? क्या हलाले के लिए कार्ड छपते हैं? दुनियावी के हिसाब से भी देखिए तो हलाला करने वाले मुंह छुपाते फिरेंगे, कभी दूसरों को नहीं बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है, किसके जज्बात को ठेस पड़ी? एक औरत सबसे पहले अपने पिछले मर्द के जुल्म सितम से सताई गई, फिर उसने 3 महीने की इद्दत काटी, सारे मुआशरे की बातें सुनी, उसके माँ बाप का सर झुक गया, उसके बहन भाइयों को शर्मिंदगी हो रही है, पता नहीं क्यों तलाक हुई। हमारे यहाँ औरत को तलाक मिलना सर्टिफिकेट है इस बात का कि ये बुरी होगी, ये खराब जरूर होगी। चलिए इतने टॉर्चरों से निकली, 3 माह में जरा जख्मों पे फाये रखेंगे तो आप उसके बाद नया निकाह करें, क्या औरत के नहीं जज्बात? फिर एक ऐसे मर्द से जिसको पता नहीं वो पसंद भी करती है कि नहीं, आम मर्द कि जिसको औरत पसंद ना करे उससे निकाह नहीं करना चाह सकता, तो जिससे हलाला किया कराया जा रहा है, क्या औरत उस मर्द को पसंद करती है? कोई कैसा भी हो सकता है, नेक भी है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कोई बूढ़ा भी हो सकता है, कोई जवान भी हो सकता है, कोई उम्र में छोटा। और इतनी लंबी उन्होंने कहानियां उस लेक्चर में सुनाई हुई थी जिनका मैं तذکرہ कर रही हूँ, कि लोगों ने किया हलाला पैसों के लिए, शादी के बाद नीयत बदल गई, कहा चले जाओ मैंने नहीं देना, मेरी बीवी बन गई है मैं तुम्हें नहीं देता। यानी अल्लाह के कानून को तोड़ने का ये नुकसान है। यही कहते हैं कि अल्लाह की हदों के पास ना जाओ। मेरा ख्याल है कि आज हलाला करने कराने वाले बनी इसराइलियों की नजर में तो फिर वो बहुत समझदार हैं, क्यों ना गरीबों ने तो मछलियां ही पकड़ी थी हफ्ते और इतवार के बीच के चक्कर में, आज ये काम कर करके दीन का मजाक उड़ाने वाले उससे बड़े ट्रिकर्स हैं। इसलिए ऐसी चीजों को बहुत क्लियरली समझना रहना चाहिए, और उसके बाद सब खत्म होगी बात। मेरा ख्याल है कि ये मौजू बहुत क्लियर आपके लिए, कोई एक भी हाथ उठा के कह देना कि मुझे ये बातें नहीं समझ आई, मैं फिर दोहराने को तैयार हूँ, क्योंकि हमने इतना क्लैरिफाई करके इतना आसानी से पढ़ लिया, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। एक सवाल और आखिरी आयत जो थी 230, उसमें से कि अल्लाह की आयतों को खेल ना बनाओ, इससे क्या मुराद है? क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है कि अल्लाह ताला कहते हैं वला तत्तखिज़ु आयातिल्लाहि हुज़ुवा, तो आयतों को खेल कैसे बनाया जाता है? अपनी मर्जी के तौर तरीकों पर उनको इस्तेमाल करना। अल्लाह की आयतें के वही बात, जैसे अब देखिए शादी, फिर उसके बाद तलाक, फिर उसमें हलाला, फिर शादी, फिर तीसरी बार शादी, फिर उस औरत के साथ रचाई जाएगी और बात बात पे ऐसे काम किए जाएंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जुल्म और ज्यादती भी होगी। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु अपनी मुस्नद में और इब्ने मरदविया ने अबू दरदा से रिवायत की कि आदमी तलाक देता था, फिर इसके बाद कहता कि मैं तो खेल रहा हूं, और गुलाम को आजाद करता और कहता कि मैं मजाक कर रहा हूं। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी कि अल्लाह के हुक्मों को मजाक ना समझो। ये फी असबाब नज़ूल अलामा सय्यूती की किताब है, उसमें इस आयत की शान नज़ूल में बात लिखी है। यहां से एक और बात नोट कर लें, नबी सल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा की रिवायत है अबू दाऊद और तिरमिज़ी में, कि 3 काम ऐसे हैं चाहे संजीदगी से किए जाएं, सीरियसली इरादे से मसलन, या मजाक की नीयत से किए जाएं, वो हो जाते हैं। नंबर एक, निकाह ड्रामा हुआ, आप उसमें लड़की लड़के का एक मजाक मजाक में निकाह करते हैं, मजाक में लड़का लड़की कहते हैं चलो जी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से और हम निकाह कर लें, मजाक से करें सीरियसली करें वो हो जाता है, खुद कर रहे हैं तो गुनाहगार हो रहे हैं लेकिन हो जाएगा वो, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरी चीज तलाक, मियां बीवी आपस में लड़ रहे हैं या लाड़ कर रहे हैं या खेल कर रहे हैं, मजाक में मियां कहते हैं जब मैंने तुझे तलाक दी, अब वो कहते हैं ना मैंने मजाक किया, वो हो गई है। और तीसरी चीज रुजू, ये है अल्लाह की आयतों को खेल बनाना, कि ऐसे कामों में इस तरह ना करो, ये चीजें नहीं। और आगे देखिए वज़्कुरु नेमत अल्लाह अलैकुम, अल्लाह की नेमत तुम पर इस्लाम, वमानज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमा, हिकमत किताब तुम्हें मिली, नसीहत दी, जिंदगी गुजारने का तरीका दिया, तुम्हें अल्लाह ने अच्छे बुरे की तमीज बताई, अब तुम इन सारों को जान रहे हो, नहीं मानते तो वालमल्ला बिकुल्ली शहीन अलीम, अल्लाह तला को हर चीज की खबर है, अल्लाह ताला को खूब पता है कि कौन कहाँ किस नियत से है।